एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने चेतना यानी कॉन्शियसनेस को देखने का नजरिया ही बदल दिया।
हाँ, ये किताब वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है।
ये है डैनियल डिनेट की जानी मानी और हाँ थोड़ी कह सकते हैं विवादास्पद किताब कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड।
और देखिए, ये विषय आज इतना जरूरी क्यों हो गया है, क्योंकि एक तरफ हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम दिमाग को बेहतर समझने की कोशिश में लगे हैं।
बिल्कुल, और वो सबसे बुनियादी सवाल कि हम खुद क्या हैं, ये मैं होने का एहसास ये कहाँ से आता है।
हाँ, ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है, और ये किताब डेनेट की किताब इसी मैं पर सवाल उठाती है, काफी गहरे सवाल।
सही कहा, और आज हमारा मकसद यही है कि डेनेट के इन विचारों को, जो कभी कभी थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, उन्हें थोड़ा आसान करके समझें।
खासकर उनका वो मेन तर्क कि जिसे हम अपनी चेतना मानते हैं वो शायद वैसी है ही नहीं जैसी हम सोचते हैं, बिल्कुल अलग।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना।
सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। डैनियल सी डेनेट, 2024 में ही उनका निधन हुआ।
हाँ, और वो अपने समय के बहुत ही माने हुए प्रभावशाली दार्शनिक और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक, मतलब कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे।
बिल्कुल, अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और वहां सेंटर फॉर कॉग्निटिव स्टडीज के को डायरेक्टर भी थे।
और डेनेट की सबसे खास बात ये थी कि वो सिर्फ किताबी दार्शनिक नहीं थे, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फिलॉसफी को असल विज्ञान से जोड़ा, जैसे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस यानी दिमाग का विज्ञान, और एआई से भी।
अच्छा, मतलब वो लैब में भी जाते थे, वैज्ञानिकों से मिलते थे।
हाँ बिल्कुल, उनके प्रयोगों को समझते थे, डेटा देखते थे, और फिर उस सब का इस्तेमाल अपने सिद्धांत बनाने में करते थे। वो फंक्शनलिज्म के बड़े समर्थक थे।
उनकी काबिलियत ही उन्हें खास बनाती थी।
हाँ, और वो मुश्किल साइंटिफिक बातों को भी आम भाषा में समझा पाते थे। कंप्यूटर साइंस से उदाहरण लेकर दिमाग के काम करने के तरीके को समझाने की कोशिश करते थे।
इसी वजह से वो चेतना पर इतना बड़ा, इतना वैज्ञानिक आधार वाला सिद्धांत दे पाए।
हाँ, और इसी नजरिए से निकली है ये किताब कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड,
जो हमारी चेतना के बारे में सबसे गहरी समझ को, हमारी गट फीलिंग को हिलाने का इरादा रखती है। काफी महत्वाकांक्षी किताब है ये।
बिल्कुल, लक्ष्य साफ है, चेतना के रहस्य से पर्दा उठाना। डेनेट चाहते हैं कि हम मन के बारे में अपनी पुरानी सहज लगने वाली धारणाएं छोड़ दें
और उनकी जगह एक ज्यादा वैज्ञानिक भौतिकवादी नजरिया अपनाएं।
और किताब का जो सबसे बड़ा निशाना है वो है एक आइडिया जिसे डेनेट कार्टेशियन थिएटर कहते हैं।
कार्टेशियन थिएटर, ये क्या है?
ये हमारी वो आम समझ है, वो इंट्यूशन के दिमाग में कहीं एक खास जगह है, एक सेंटर।
अच्छा, जैसे कोई सिनेमा हॉल हो दिमाग के अंदर।
हाँ बिल्कुल, एक मेंटल स्टेज जहां सारी जानकारी पहुंचती है, सब कुछ एक साथ आता है और मैं नाम का कोई दर्शक बैठकर ये सब देख रहा है।
ये तो सुनने में काफी हद तक सही लगता है, हमें ऐसा ही तो महसूस होता है।
हाँ महसूस होता है, लेकिन डेनेट कहते हैं कि ये आइडिया लॉजिकली और साइंटिफिकली दोनों तरह से गलत है, टिक नहीं सकता।
अच्छा, तो अगर ये सेंट्रल स्टेज वाला आइडिया गलत है तो फिर सही क्या है? डेनेट क्या कहते हैं?
डेनेट पेश करते हैं अपना मॉडल, मल्टीपल ड्राफ्ट्स मॉडल।
मल्टीपल ड्राफ्ट्स मतलब कई सारे ड्राफ्ट्स।
हाँ सोचिए, हमारा दिमाग एक साथ कई काम कर रहा है, अलग अलग हिस्सों में पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही है।
ओके,
और ये लगातार दुनिया की अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग वर्जन या कहें ड्राफ्ट्स बना रहा है।
तो कोई एक फाइनल कॉपी नहीं है?
नहीं, डेनेट के हिसाब से कोई एक फाइनल ऑफिशियल वर्जन नहीं है जो खास तौर पर चेतन बनता हो।
तो फिर चेतना क्या है, मतलब इस मॉडल के हिसाब से?
चेतना इन बहुत सारे लगातार बदलते और कभी कभी आपस में मुकाबला करते ड्राफ्ट्स का नतीजा है, बस एक नतीजा।
अच्छा, तो जो ड्राफ्ट किसी वजह से ज्यादा पावरफुल हो गया?
हाँ, जो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर दे या जिसके बारे में हम बोल पाए, रिपोर्ट कर पाए, वही हमें चेतन अनुभव जैसा लगता है।
तो ये किताब हमें इसी सफर पर ले जाती है, पहले पुराने विचारों को तोड़ना
और फिर इस नए मॉडल को बनाना, उसे समझाना।
चलिए, ये जो कार्टेशियन थिएटर वाली बात है इससे थोड़ा और समझते हैं। ये हमारी वो गहरी फीलिंग है ना कि दिमाग के अंदर कोई मैं बैठा है।
हाँ,
जो आंखों से दुनिया देख रहा है, कानों से सुन रहा है, फैसले ले रहा है। तो डेनेट को इससे क्या दिक्कत है, क्यों गलत मानते हैं इसे?
देखिए, पहली बात तो यह है कि ये एक अंतहीन सवाल खड़ा करता है। अगर दिमाग में एक छोटा मैं बैठा है तो उस मैं के अंदर चेतना कौन देख रहा है, फिर उसके अंदर कौन?
अच्छा, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। इसे होमोन्क्यूलस प्रॉब्लम कहते हैं शायद।
हाँ बिल्कुल। और दूसरी ज्यादा जरूरी बात यह है कि दिमाग की स्टडीज में, स्कैन वगैरह में, ऐसा कोई एक सेंट्रल हेडक्वार्टर आज तक मिला ही नहीं है जहाँ सब कुछ इकट्ठा होता हो।
तो सबूत भी नहीं है इसके पक्ष में।
यही पर मल्टीपल ड्राफ्ट मॉडल एक अलग तस्वीर पेश करता है। कल्पना कीजिए दिमाग एक न्यूज रूम जैसा है।
न्यूज रूम कैसे?
जैसे कई रिपोर्टर हैं एक ही घटना पर अलग अलग एंगल से स्टोरी लिख रहे हैं, उसे एडिट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं।
हाँ ठीक है।
तो कोई एक मास्टर कॉपी नहीं होती है ना, कई वर्जन होते हैं। डेनेट कहते हैं दिमाग भी कुछ ऐसा ही है।
अच्छा,
तो चेतना कब आती है फिर?
कि ये पूछना ही गलत है कि कोई चीज ठीक किस पल में चेतन हुई।
हाँ, क्योंकि ऐसी कोई फिनिश लाइन है ही नहीं, कोई जादुई पल नहीं है।
लेकिन अगर कोई एक फाइनल वर्जन नहीं है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी सोच, हमारा अनुभव इतना सीधा और एक सार है, एक फ्लो में चलता हुआ?
अच्छा सवाल है। इसे समझाने के लिए डेनेट एक बड़ा मजेदार प्रयोग बताते हैं, कलर फाइव फेनोमेना।
कलर फाइव फेनोमेना, ये क्या होता है?
हाँ, ये कमाल का उदाहरण है। सोचिए स्क्रीन पर एक लाल बिंदी है, वो एक जगह चमकती है, फिर तुरंत बाद थोड़ी दूर एक हरी बिंदी चमकती है।
ठीक है, लाल फिर हरी।
हाँ, अगर ये बहुत तेजी से हो तो हमें पता है क्या दिखता है? हमें लगता है कि एक ही बिंदी थी जो हिलती हुई एक जगह से दूसरी जगह गई और बीच रास्ते में लाल से हरी हो गई।
अरे हाँ, ऐसा लगता है जैसे रंग बदलता हुआ जा रहा है।
अब यहीं फंसता है कार्टेशियन थिएटर वाला आइडिया।
कैसे?
अगर दिमाग में कोई एक सेंट्रल दर्शक बैठा है तो दूसरी हरी बत्ती दिखने से पहले उसे कैसे पता चला कि रंग बदलना है, ताकि वो बीच रास्ते में रंग बदलता हुआ दिखा सके। ये तो भविष्य देखने जैसा हो गया।
हाँ ये तो गड़बड़ है, उसे कैसे पता चलेगा कि आगे हरी बत्ती आने वाली है?
डेनेट का मल्टीपल ड्राफ्ट्स मॉडल कहता है दिमाग ने भविष्य नहीं देखा, उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की।
तो फिर
उसने पहले लाल बिंदी को प्रोसेस किया, फिर हरी बिंदी को प्रोसेस किया, उसके बाद दिमाग ने एक कहानी या ड्राफ्ट बनाई, और उस कहानी में ये अनुभव सबसे सटीक बैठता था कि कुछ हिला और रंग बदला।
अच्छा, तो ये कहानी बाद में बनी, प्रोसेसिंग होने के बाद।
हाँ, कहानी बाद में बनी, लेकिन हमें महसूस ऐसा हुआ जैसे हमने उसे होते हुए देखा। कोई जादू नहीं है, बस दिमाग का जानकारी को प्रोसेस करने और उसकी व्याख्या करने का तरीका है। बाद में एक मतलब निकाला।
ये वाकई सोचने वाली बात है। और भी उदाहरण है कैसे?
हाँ, कई हैं जो दिमाग के इस फैले हुए डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से काम करने की तरफ इशारा करते हैं, जैसे ब्लाइंड साइट के मरीज।
ब्लाइंड साइट मतलब अंधापन।
हाँ, उनके दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में चोट होती है। वो कहते हैं कि उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अगर उनसे अंदाजा लगाने को कहें कि सामने क्या चीज रखी है या किस तरफ है, तो वो अक्सर चांद से कहीं ज्यादा सही बताते हैं।
अरे मतलब जानकारी प्रोसेस तो हो रही है भले ही उन्हें दिख ना रहा हो।
बिल्कुल, जानकारी है पर सचेत अनुभव नहीं है। ये दिखाता है कि प्रोसेसिंग फैली हुई है।
और वो स्प्लिट ब्रेन वाले मरीजों का क्या?
हाँ, वो भी एक क्लासिक उदाहरण है। जिनके दिमाग के दोनों हिस्सों, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच का कनेक्शन कॉर्पस कैलोसम कटा होता है।
तो उनके दिमाग के दोनों हिस्से अलग अलग काम करते हैं?
हाँ, और अक्सर उनका बायां हिस्सा जो भाषा संभालता है वो दाएं हिस्से के कामों के लिए कहानियां गढ़ लेता है।
हाँ।
ताकि दुनिया समझ में आती रहे भले उसे पता ना हो कि दाएं हिस्से ने वो काम क्यों किया।
मतलब दिमाग कहानियां बना रहा है चीजों को समझाने के लिए। ये सब डेनेट के मॉडल को सपोर्ट करता है कि चेतना कोई एक जगह होने वाली चीज नहीं है।
बिल्कुल। अब डेनेट सिर्फ ये नहीं पूछते कि चेतना कहाँ और कब होती है, वो ये भी पूछते हैं ये इंसानों में विकसित कैसे हुई।
एवोल्यूशन।
हाँ, वो चेतना के विकास के कुछ चरण बताते हैं, डार्विनियन, स्किनेरियन, पोपेरियन,
और फिर सबसे महत्वपूर्ण शायद आखिरी चरण ग्रिगोरियन।
यहाँ वो कहते हैं कि इंसानी चेतना को जो चीज खास बनाती है वो है हमारे कल्चरल टूल, हमारे सांस्कृतिक उपकरण,
और इनमें सबसे जरूरी
भाषा और मीम्स, यानी वो विचार, फैशन, आदतें जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में नकल होकर फैलते हैं, कल्चर।
हाँ, भाषा डेनेट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। वो एक आइडिया देते हैं जॉयसियन मशीन का।
जॉयसियन मशीन?
क्या जेम्स जॉयस के नाम पर है?
हाँ, शायद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाले नॉवल की वजह से।
लेकिन ये कोई असली मशीन नहीं है ना?
नहीं, ये एक रूपक है, एक मेटाफर।
जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर चलता है ना।
हाँ।
वैसे ही डेनेट कहते हैं कि हमारे दिमाग का जो पैरेलल काम करने वाला हार्डवेयर है उस पर भाषा एक तरह का वर्चुअल सॉफ्टवेयर चलाती है।
अच्छा।
और इसी सॉफ्टवेयर की वजह से हमें अपनी सोच एक सीधी लाइन में एक धारा की तरह महसूस होती है।
हाँ, भले ही दिमाग में नीचे बहुत कुछ एक साथ चल रहा हो।
हाँ, ये भाषा ही हमें वो क्रमिक अनुभव देती है।
और यहीं से जुड़ा है डेनेट का शायद सबसे चौंकाने वाला, सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाला आइडिया।
हाँ, कि आप असल में कौन हैं, ये स्व सेल्फ क्या चीज है।
क्या कहते हैं डेनेट इसके बारे में?
डेनेट कहते हैं कि स्व कोई ठोस चीज नहीं है, कोई आत्मा नहीं, कोई दिमाग में बैठा छोटा इंसान नहीं।
तो फिर क्या है?
ये है एक कथा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। कथा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, ये क्या मतलब हुआ?
सोचिए, जैसे किसी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो एक काल्पनिक बिंदु है जिसके चारों ओर उसका वजन संतुलित होता है, पर उस बिंदु का अपना कोई वजन, कोई मास नहीं होता, वो बस एक कैलकुलेशन है।
हाँ ठीक है।
डेनेट के अनुसार स्व भी कुछ ऐसा ही है। ये वो काल्पनिक हीरो है जिसके इर्द गिर्द हम अपनी जिंदगी की कहानियां बुनते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं।
तो स्व हमें एक पहचान का एहसास देता है, लेकिन वो कहानियों से बनता है, वो पहले से मौजूद नहीं होता।
एग्जैक्टली, वो कहानियों का नतीजा है, उनका कारण नहीं।
मतलब मैं बस एक कहानी हूँ, ये मानने में थोड़ा अजीब लगता है, झटका सा लगता है।
हाँ, ये डेनेट के सबसे रेडिकल विचारों में से एक है। और एक और जगह डेनेट हमें चौंकाते हैं, वो है क्वालिया के मुद्दे पर।
क्वालिया, हाँ ये शब्द सुना है। ये वो निजी अनुभव होते हैं ना, जैसे सेब का लालपन देखना या दर्द महसूस करना।
बिल्कुल, हमारे अनुभवों के वो निजी सब्जेक्टिव गुण, कॉफी की महक कैसी लगती है, दर्द कैसा चुभता है, ये फीलिंग्स।
कई दार्शनिक मानते हैं कि ये चेतना की सबसे बड़ी पहेली है, कठिन समस्या, हार्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं इसे, कि ये फिजिकल दिमाग से ये निजी एहसास कैसे पैदा होते हैं।
हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शन में, लेकिन डेनेट का नजरिया यहाँ भी एकदम अलग, एकदम क्रांतिकारी है।
वो क्या कहते हैं क्वालिया के बारे में?
डेनेट एक तरह से कहते हैं कि क्वालिया जैसी कोई रहस्यमयी अलग से मौजूद चीज है ही नहीं।
क्या मतलब? ये एहसास तो होते हैं, मुझे लाल रंग लाल ही दिखता है।
हाँ, डेनेट ये नहीं कह रहे कि हमें अनुभव नहीं होते। उनका तर्क ये है कि जब हम सोचते हैं कि हम लालपन या दर्द के एहसास की असलियत की बात कर रहे हैं, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं?
क्या कर रहे होते हैं?
हम असल में उस अनुभव से जुड़े हमारे तमाम निर्णयों, हमारी प्रतिक्रियाओं, हमारी यादों, हमारे व्यवहारों के एक बहुत जटिल जाल की बात कर रहे होते हैं।
अच्छा, मतलब सिर्फ उस एहसास की नहीं, बल्कि उससे जुड़ी हर चीज की।
हाँ, डेनेट मानते हैं कि अगर आप ये सब समझा दें कि लाल रंग देखकर हमारा दिमाग और शरीर क्या क्या करता है, हम उसे कैसे पहचानते हैं, उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर समझाने के लिए कोई अतिरिक्त जादुई निजी एहसास बचता ही नहीं।
ओ तेरी, मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, वो कह रहे प्रॉब्लम है ही नहीं।
हाँ, एक तरह से उसे हल करने के बजाय भंग कर देते हैं, कहते हैं कि जो चीज समझाई नहीं जा सकती वो शायद है ही नहीं।
वाह, ये तो सच में सोचने का एकदम नया तरीका है, दिमाग घुमा देने वाला।
बिल्कुल, डेनेट के विचार ऐसे ही हैं।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य विषयों को, मेन थीम्स को समेटें, तो सबसे पहला और बड़ा संदेश क्या होगा?
मेरे ख्याल से सबसे केंद्रीय, सबसे जरूरी संदेश है कार्टेशियन थिएटर का भ्रम। ये आइडिया कि दिमाग में कोई कंट्रोल रूम या दर्शक बैठा है, ये गलत है।
चेतना एक फैली हुई समानांतर चलने वाली प्रक्रिया है।
हाँ, और शायद हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं, जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं या बिना सोचे समझे कोई काम कर लेते हैं, सब कुछ एक जगह से कंट्रोल होता हुआ नहीं लगता है ना?
सही बात है। और दूसरा बड़ा विचार,
वो स्व का एक कहानी होना, कथा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र।
हाँ, ये विचार मुझे बहुत शक्तिशाली लगता है। हम सब अपनी पहचान बनाते हैं, अपनी कहानियां सुनाते हैं।
बिल्कुल, भारत में तो परिवार, समुदाय, इतिहास, ये सब हमारी कहानी का कितना बड़ा हिस्सा होते हैं।
और आजकल सोशल मीडिया प्रोफाइल देख लीजिए, वो भी तो एक तरह से अपने स्व की एक चुनी हुई एडिटेड कहानी ही है।
हाँ, डेनेट का मॉडल इस सबको समझने का एक फ्रेमवर्क देता है कि ये पहचान कैसे बनती है।
और तीसरा अहम संदेश,
वो है अपने अंतर्ज्ञान पर सवाल उठाना, अपने इंट्यूशंस पे भरोसा न करना।
हाँ, ये किताब सिखाती है कि हमारे अपने मन के बारे में जो बातें हमें बिल्कुल सहज और सच्ची लगती हैं, वो भी भ्रामक हो सकती हैं, धोखा दे सकती हैं।
बिल्कुल, सिर्फ अंदर झांकने से, आत्मनिरीक्षण से काम नहीं चलेगा, वैज्ञानिक पड़ताल, सबूत, ये जरूरी हैं।
और आज के दौर में तो ये स्किल बहुत जरूरी है, जहां हर तरफ से इतनी जानकारी, इतने दावे आ रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग,
हाँ, आलोचनात्मक सोच,
ये किताब वाकई ऐसे विचारों से भरी है जो दिमाग को झकझोर देते हैं, चलिए कुछ यादगार विचारों को उनके सार रूप में देखते हैं।
हाँ, कुछ की आइडियाज।
पहला, वही स्व वाला विचार। डेनेट के शब्दों में कहें तो स्व शरीर की डोर खींचने वाला कोई कठपुतली चलाने वाला नहीं है, बल्कि मस्तिष्क द्वारा रचित एक कल्पना है। ये कथा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, एक उपयोगी अमूर्त बिंदु जिसके चारों ओर हम अपने बारे में कहानियां बुनते हैं।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बदलती हुई, लगातार लिखी जा रही कहानी है।
बिल्कुल। दूसरा, चेतना की कोई फिनिश लाइन नहीं, मस्तिष्क में कोई एक फिनिश लाइन या जादुई क्षण नहीं होता जहां कोई धारणा चेतन हो जाती है। मस्तिष्क कई समानांतर धाराओं में जानकारी संसाधित करता है, जिसे हम चेतना कहते हैं। वो बस इनमें से किसी एक ड्राफ्ट का व्यवहार को प्रभावित करने या रिपोर्ट किए जाने का परिणाम है।
ये इस सवाल को ही बदल देता है कि हम कब जागरूक होते हैं। सवाल शायद ये होना चाहिए कि कौन सा मानसिक प्रोसेस उस पल हावी है, किसका प्रभाव ज्यादा है।
सही। और एक और दिलचस्प उपमा जो डेनेट देते हैं, चेतना सेरेब्रल सेलिब्रिटी की तरह है।
सेरेब्रल सेलिब्रिटी, दिमाग की सेलिब्रिटी।
हाँ, चेतना मस्तिष्क में सेलिब्रिटी होने जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कम कुछ नहीं।
अच्छा, मतलब?
मतलब जैसे एक सेलिब्रिटी सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, मीडिया कवरेज पाता है, जिसका असर ज्यादा होता है समाज में।
हाँ।
वैसे ही दिमाग में जो विचार या प्रक्रिया सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है, सबसे ज्यादा अटेंशन पाती है बाकी प्रोसेसेस से, वो ही हमें चेतन लगती है।
ओह, तो ये चेतना का एक फंक्शनल नजरिया है, काम के आधार पर परिभाषा।
बिल्कुल।
ये सब सुनने में बहुत थ्योरेटिकल, बहुत अकादमिक लग सकता है, लेकिन इसके कुछ व्यावहारिक पहलू भी हो सकते हैं, शायद हमारी रोज की जिंदगी से जुड़े।
हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे अगर हमारा स्व एक कहानी है जिसे हम खुद लिखते हैं,
तो ये हमें एक तरह की आजादी देता है ना, हम अपनी कहानी के लेखक बन सकते हैं, उसे बदल सकते हैं।
हाँ, ये पर्सनल ग्रोथ में या किसी मुश्किल वक्त से उभरने में मददगार हो सकता है, अगर हम अपनी कहानी को अलग नजरिए से देखें या लिखें।
कुछ थेरेपी भी तो इसी विचार पर आधारित हैं, जैसे कथा चिकित्सा, नैरेटिव थेरेपी।
बिल्कुल। और जैसा हमने पहले कहा, अपनी सहज धारणाओं पर सवाल उठाना सीखना, ये तो जिंदगी के हर पहलू में काम आता है।
हाँ, चाहे वो खबरों को समझना हो, विज्ञापनों को देखना हो, या फिर नई टेक्नोलॉजी जैसे AI को समझना हो।
बिल्कुल। अगर चेतना दिमागी प्रोसेसिंग का ही एक नतीजा है, जैसा डेनेट कहते हैं, तो क्या मशीनें भी चेतन हो सकती हैं? ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है।
हाँ, डेनेट का काम हमें इन मुश्किल सवालों से जूझने के लिए वैचारिक हथियार देता है, सोचने का एक नया फ्रेमवर्क।
तो अंत में इस किताब से, इस चर्चा से क्या लेकर जाएं? आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि चेतना हमारी रोजमर्रा की समझ से कहीं ज्यादा अजीब, ज्यादा पेचीदा, ज्यादा एलियन चीज हो सकती है।
हाँ, ये वाकई एलियन जैसा लगता है कभी कभी।
और ये कि विज्ञान और दर्शन मिलकर इन गहराइयों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, भले ही जवाब हमें थोड़ा असहज करें, हमारे आरामदेह विचारों को चुनौती दें। डेनेट की हिम्मत और बौद्धिक ईमानदारी भी कमाल की है।
मेरे लिए वो कथात्मक स्व वाला विचार सबसे ज्यादा असरदार रहा। ये हमें अपनी पहचान को कम बोझिल और ज्यादा लचीला देखने में मदद करता है। हम सिर्फ एक कहानी है जिसे बदला जा सकता है।
हाँ, ये काफी सशक्त विचार है।
और ये भी कि कैसे अलग अलग ज्ञान के क्षेत्र, फिलॉसफी, न्यूरोसाइंस, AI मिलकर हमें बेहतर समझ दे सकते हैं। चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जाते जाते,
सोचने के लिए।
हाँ, जरूर। अगर चेतना मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का उपयोगकर्ता भ्रम है, जैसा डेनेट कहते हैं, तो ये उस वास्तविकता की प्रकृति के बारे में क्या बताता है जिसे हम अनुभव करते हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।